समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सभी को विश्व पुस्तक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जीवन में पुस्तकों के महत्व को रेखांकित करता ये अवसर पुस्तकों के संरक्षण के लिए जागरूक करता है। पुस्तकें अनुभव, संवेदनाओं और प्रगति का प्रमाणिक दस्तावेज है। पुस्तकों का अध्ययन जीवन को सदैव नई दिशा देता है। तो आइए नई पीढ़ी को भी किताबों से जुड़ाव के लिए प्रेरित करें, किताबों को अपना दोस्त बनाएं, खुद शिक्षित बने और दूसरों को भी शिक्षित करें।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम सर फिरोजी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड आई अग्री विद यू सर फिरोजी, अ बुक इज अ ड्रीम दैट यू होल्ड इन योर हैंड एंड टुडे इज अ डेट दैट्स एच्ड इन लिटररी हिस्ट्री। इट्स द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ ऑल टाइम hits writers, that is William Shakespeare and William Wordsworth, two masters of the written word who left an indelible mark on literature. So now we bring you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we share the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 23rd of April. Single phase polling for assembly elections in Tamil Nadu and first phase of voting in West Bengal is being held today.
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण और तमिलनाडु में एक ही चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम, पश्चिम और पूर्वी मेदिनीपुर शामिल हैं।
In Tamil Nadu, the voting began at 7 a.m. and will continue till 6 p.m. Any voter standing in the queue before 6 p.m. will be allowed to vote. Polling will take place in all 234 constituencies in the single phase today. Over 5.73 crore voters will decide the electoral fate of 4,023 candidates in the fray. Chief Electoral Officer Archana Patnaik said that extensive multi-layered and comprehensive arrangements made by the Election Commission to ensure smooth, orderly and peaceful polling in the state. More than 75,000 polling stations have been established across the state to facilitate voter participation and ensure accessibility. Security arrangements have been significantly strengthened and scaled up with deployment of about 84,000 police personnel across the state at polling stations, strong rooms and other sensitive locations to maintain law and order. In addition to this, 300 companies of CAPF, including CRPF personnel, have been stationed across sensitive and vulnerable areas to maintain peace and prevent any untoward incidents during the polling process. Flying squads, surveillance teams and static monitoring units have been actively deployed and are continuously working across districts to check violations of model code of conduct and to respond promptly to any complaints. Mobile phones are not allowed inside polling stations and special arrangements have been made at polling booths for voters to safely deposit their devices before entering the polling premises to cast their votes. The results of West Bengal, Tamil Nadu along with Assam, Kerala and Puducherry will be declared on May 4.
इस बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नदिया जिले के कृष्णा नगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कल दमदम, हावड़ा और सप्तग्राम में रैलियों को संबोधित किया। तृणमूल कांग्रेस की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अमदंगा और हरिपाल में चुनाव प्रचार किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हैं। निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आचार संहिता का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया है। श्री खड़गे ने तमिलनाडु के चेन्नई में एक संवाददाता सम्मेलन में ये टिप्पणी की थी। आयोग ने श्री खड़गे से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है।
Defense Minister Rajnath Singh visited TKMS submarine building facility in Kiel, Germany yesterday. In a social media post, Mr. Singh said that he was accompanied by the German Defense Minister Boris Pistorius. The minister added that the visit showcased cutting-edge technologies and advanced naval capabilities which will be mutually beneficial for cooperation in maritime domain.
ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य नहीं खोला जा सकता। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर कलीबाफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उल्लंघनों में ईरान के बंदरगाहों की अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी शामिल है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन, नाकाबंदी और धमकियां वास्तविक वार्ता में मुख्य बाधाएं हैं। मंगलवार रात को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ईरान संघर्ष विराम को बढ़ाने की घोषणा की थी। ये संघर्ष विराम कल समाप्त होने वाला था।
तथागत होली सेक्रेड रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर सेट टू ट्रैवल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम दीज होली रिमेन्स विल लीव इट्स परमानेंट प्लेस फॉर एन एग्जीबिशन विद इन द कंट्री। द अनाउंसमेंट वॉज मेड ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली अटेंडेड बाय द यूनियन कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख विनय कुमार सक्सेना। द एग्जीबिशन इज शेड्यूल्ड टू लास्ट फॉर 15 डेज स्टार्टिंग ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। द रेलिक्स विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ स्पेशल aircraft with Z category security to ensure their safety. Addressing the press conference, Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat said that this exposition will not just serve as a display but as a celebration of country's soul and civilization. He said that the event is expected to draw a massive crowd, including heads of state, monks and devotees from across the globe. He noted that similar international expositions of the sacred relics have drawn large participation across countries, strengthening India's cultural and civilizational connection globally. Mr. Shekhawat emphasized that the teachings of Lord Buddha on non-violence, compassion and inner awakening hold deep relevance in today's global context marked by uncertainty and conflict.
वैध प्रदूषण नियंत्रण पीयूसी प्रमाण पत्र के बगैर वाहनों को दिल्ली के ईंधन स्टेशनों पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी जैसे ईंधन नहीं दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में वाहन प्रदूषण पर प्रभावशाली नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया है।
नए निर्देश के अनुसार ईंधन की आपूर्ति केवल वैध पीयूसी प्रमाण पत्र धारक वाहनों को ही की जाएगी। सरकार ने कहा कि कार्यान्वयन में शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के लिए स्पष्ट जवाबदेही तय की गई है। सभी पेट्रोल पंपों और गैस आउटलेट्स को आदेश का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की चूक या लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने और सतत और व्यापक उपायों के माध्यम से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस और प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है और यह निर्णय उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
In Uttarakhand, the portals of Badrinath Dham, located in Chamoli district, are now open for devotees since this morning. The district administration has made elaborate arrangements to ensure a safe pilgrimage for the devotees. The portals of Kedarnath Dham were open for devotees yesterday, while the pilgrimage to Gangotri and Yamunotri Dhams is proceeding smoothly.
आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस का सामना आज चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच मुंबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 40 रन से हरा दिया।
In the third women's T20 international cricket in Johannesburg, South Africa defeated India by 9 wickets last night. Chasing a target of 193 runs, South Africa made 193 runs with the loss of only 1 wicket in 16.3 overs. South Africa women's captain Laura Woolworth won the toss and opted to bowl against Indian women. India put into bat first, posted 192 for 4 wickets in 20 overs. India is trailing 0-3 in the 5-match series. The ministry informed that the venues include the Mahabodhi International Meditation Centre, Dharm Centre of Leh Palace and CIBS. It added that the exposition will also extend to Zanskar from 11th to 12th of the next month, followed by a closing ceremony in Leh on 14th of next month and departure of the sacred relics on 15th of next month.
श्रोताओं अब आपको देंगे महानगरों का हाल। शुरुआत कर रहे हैं बेंगलुरु से नीना।
यस सर फिरोजी, The Karnataka government has proposed a 10-year plan to redevelop the 700-acre Hindustan Aeronautics Limited Airport campus in Bengaluru into a global aerospace district integrating defense, civil aviation and space sectors. The HAL Aerospace Renaissance Master Plan, prepared by the Karnataka State Policy and Planning Commission, aims to position the city alongside global hubs and generate over 2 lakh high-skill jobs. Key proposals include an MRO ecosystem with Safran, Defence Manufacturing and Bharat Electronics Limited, Urban Air Mobility and a major skilling academy. The project requires central approval as the land falls under the Defence Ministry. Student wings across Karnataka, cutting across parties, have demanded immediate restoration of college elections following Chief Minister Siddaramaiah's budget announcement. At a meeting led by Ministers Sharan Prakash Patil and MC Sudhakar, leaders urged quick polls and rule making. While some sought reservations and broader representation, others pushed for eligibility norms like attendance and no FIRs, drawing objections. The government said it would base guidelines on the Lingdo committee report with updates. Faculty and management also backed free and fair elections.
और श्रोताओं आपको देंगे राष्ट्रीय राजधानी की हलचल। दिल्ली में हरियाली और शहरी सौंदर्य को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के अंतर्गत मेट्रो कॉरिडोर और स्टेशन के आसपास चयनित स्थानों पर हरियाली को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऐसे पौधों का चयन किया जाएगा जो कम रोशनी और पानी में भी आसानी से विकसित हो सके, साथ ही इनके रखरखाव और समय समय पर मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 1 वर्ष तक चलेगा और इसके परिणामों का उपयोग भविष्य की योजनाओं में किया जाएगा।
And now, Sir Firozi, we have news from Hyderabad. In a landmark shift for the state's tourism sector, Telangana Minister for Tourism and Culture, Jupali Krishna Rao, officially launched the Adivasi Tourism Exposure Program yesterday. This innovative reverse tourism initiative aims to bridge the cultural gap by bringing members of the tribal community to the state capital to witness modern development and historical landmarks firsthand. The program was flagged off from Gonguda in Utnur Mandal. Minister Krishna Rao demonstrated a personal commitment to the cause by travelling alongside 250 tribal participants in a special bus. During the journey, he engaged with the youth, highlighting that exposure to urban infrastructure and higher education is vital for improving living standards and building confidence within tribal regions. The comprehensive 2-day itinerary includes Visits to major attractions such as the Rajiv Gandhi International Airport, Char Minar, Golconda Fort, Shilpa Mam, and Lumbini Park. The initiative marks a significant step in fostering a deeper connection between the state's indigenous traditions and its modern developmental narrative.
और अब रुख कर रहे हैं शहर मुंबई की ओर. मुंबई और पुणे के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है. मुंबई पुणे यशवंत राव चौहान एक्सप्रेसवे पर कुसगांव के पास पुल के रखरखाव और पेंटिंग कार्य के चलते आज और कल यातायात निलंबित रहेगा. महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के अनुसार ये ब्लॉक दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक लागू रहेगा. मुंबई की ओर जाने वाले वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग 48 की ओर कुसगांव टोल प्लाजा की तरफ मोड़ा जाएगा. वहीं पुणे की ओर जाने वाले वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग 48 और देहू रोड के वाले होते हुए मोड़ा जाएगा. वाहन चालकों को इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है. अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने मेट्रो लाइन 2B पर अपना पहला व्यवसायिक विज्ञापन शूट किया है. इसे मुंबई की मेट्रो प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है. इस पहल से करीब 20 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ. अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां मेट्रो संपत्तियों के उपयोग की दिशा में रणनीतिक बदलाव को दर्शाती हैं. श्रोताओं, महानगरों की जानकारी के बाद अब आपको देंगे महानगरों के मौसम की जानकारी. शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से. राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बिजली कड़क सकती है. न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड पार्टली क्लाउडी स्काई. द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्री. बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन. द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 23 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 36 डिग्री. हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड फॉग पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ रेन और थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म. The temperature will hover between minimum of 26 degree and a maximum of 40 degree Celsius.
और श्रोताओं, अब समय है इतिहास में दर्ज आज यानी 23 अप्रैल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का.
In 1774, Britishers captured Rohilkhand. In 1795, East India Company gave Foreign Hastings a grant of the money and he was honorably acquitted of the charges. In 1938, Viceroy Lord Linlithgow opened the hydroelectric scheme at Malakand. 1955, Political Committee of Asian African Conference at Bandung adopted an Indian resolution calling for a ban on atomic weapons.
1990 में आज ही के दिन नामीबिया संयुक्त राष्ट्र संघ का 160वां सदस्य बना.
In 1987, Supreme Court in a judgment conferred Hindu widows absolute ownership of property under Hindu Succession Act 1956. In 1991, major parties agreed for polls in Punjab.
1999 में आज ही के दिन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना के लिए 50 वर्ष पूरे होने पर वॉशिंगटन में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ.
In 2000, Mumbai regained Ranji Trophy.
2002 में पेचिंग में भारत और चीन के बीच सीमा पार आतंकवाद पर आज ही के दिन चर्चा हुई. 2003 में कुर्द और अरब विवादों को निपटाने के लिए आज ही के दिन आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया. 2007 में आज ही के दिन रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस निकोलाइविच एल्त्सिन का निधन हुआ और 2008 में अमरीकी कांग्रेस ने म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की को शीर्ष नागरिक सम्मान अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक से सम्मानित करने की घोषणा की. और श्रोताओं, अब समय है उन खास हस्तियों को नमन और स्मरण करने का जिनकी आज ही के दिन जयंती पुण्यतिथि और जन्मदिन है.
Yes, sir, Firozi, and today we remember William Shakespeare. He is the bard himself, the man who gave us Romeo and Juliet, Hamlet, Macbeth, and the priceless list goes on. William Shakespeare was an English playwright, poet, and actor. He is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist. He is often called England's national poet. His works include collaborations, consists of some 39 plays, 54 sonnets, 3 long narrative poems, and a few other verses, some of uncertain authorship. His plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright. Shakespeare remains arguably the most influential writer in the English language, and his works continue to be studied and reinterpreted. The wit and wordplay of Much Ado About Nothing, the charming rural setting of As You Like It, and the lively merrymaking of Twelfth Night complete Shakespeare's sequence of great comedies, Romeo and Juliet, the famous romantic tragedy of adolescence, love and death, and then we have Julius Caesar. Dear listeners, let's listen on to the quotes gifted to us by the legend that we use in our daily conversations.
Quoting Shakespeare, if you cannot understand my argument and declare it's Greek to me, you are quoting Shakespeare. If you claim to be more sinned against than sinning, you are quoting Shakespeare. If you recall your salad days, you're quoting Shakespeare. If you act more in sorrow than in anger, if your wish is father to the thought, if your lost property has vanished into thin air, you are quoting Shakespeare. If you've ever refused to budge an inch or suffered from green-eyed jealousy, if you've played fast and loose, if you've been tongue-tied, a tower of strength, hoodwinked or in a pickle, if you've knitted your brows, made a virtue of necessity, insisted on fair play, slept not one wink, stood on ceremony, danced attendance on your lord and master, laughed yourself into stitches, had short shrift, cold comfort, or too much of a good thing, if you've seen better days or lived in a fool's paradise, why, be that as it may, the more fool you, for it is a foregone conclusion that you are, as good luck would have it, quoting Shakespeare.
William Wordsworth was another English romantic poet who, with Samuel Taylor Coleridge, helped to launch the Romantic Age in English literature with their joint publication, Lyrical Ballads. Wordsworth's magnum opus is generally considered to be the prelude, a semi-autobiographical poem of his early years that he revised and expanded a number of times. It was posthumously titled and published by his wife in the year of his death. Wordsworth was poet laureate from 1843 until his death from pleurisy, or 23rd April 1850. He remains one of the most recognizable names in English poetry and was a key figure of the Romantic poets. Coming up for you is the recitation of Daffodils.
I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance.
आज पुण्यतिथि है शमशाद बेगम की, जो भारतीय सिनेमा में हिंदी फिल्मों की शुरुआती पार्श्व गायिकाओं में से एक थी। हिंदी सिनेमा के प्रारंभिक दौर में उनकी खनकती और सुरीली आवाज ने बड़ी संख्या में उनके प्रशंसकों की भीड़ तैयार कर दी थी। हिंदी फिल्मों के कई सुपरहिट गीत जैसे कभी आर कभी पार, कजरा मोहब्बत वाला, लेके पहला पहला प्यार, बूझ मेरा क्या नाम रे, शमशाद बेगम के नाम पर दर्ज हैं। इन गीतों की लोकप्रियता ने शमशाद बेगम को प्रसिद्धि की बुलंदियों पर पहुँचा दिया।
पुले के पहला पहला प्यार,
कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले लिए मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान।
दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना
वर्ष 2009 में भारत सरकार ने शमशाद बेगम को कला के क्षेत्र में इनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया।
आ, 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 आ,
आज पुण्यतिथि है सत्यजीत राय की, जो 20वीं शताब्दी के विश्व की महानतम फिल्मी हस्तियों में से एक थे। इन्होंने यथार्थवादी धारा की फिल्मों को नई दिशा देने के अलावा साहित्य, चित्रकला जैसी अन्य विधाओं में भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। सत्यजीत राय ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल हैं। विश्व में भारतीय फिल्मों को नई पहचान दिलाने वाले सत्यजीत राय भारत रत्न के अतिरिक्त पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं। विश्व सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सत्यजीत राय को मानद ऑस्कर अवार्ड से अलंकृत किया गया।
कितना सुहाना समय है और हम हैं कि शतरंज से महरूम।
मेरे साहब, हर मुश्किल का हल मौजूद है।
ए सुभान अल्लाह, मिर्ज़ा साहब आपकी अक्ल पे तो कभी कभी कुर्बान होने को जी चाहता है।
प्यादे तो ठीक है
जी,
तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा।
मैं तो सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, लीमू घोड़ा, मिर्ची रुख,
ठीक।
आमी चीनी गो चीनी तुमारे ओ गो विदेशिनी, तुमी थाको सिंधु पारे, तुमी थाको सिंधु पारे, ओ गो विदेशिनी, ओ गो विदेशिनी।
आमार साजपन खेते नहीं बुझी।
Roy Orbison was an American singer, songwriter, and musician known for his impassioned singing style, complex song structures, and dark emotional ballads. Many critics described his music as operatic, nicknaming him the Caruso of rock and the Big O. Here's Pretty Woman, the evergreen, soulful, timeless song sung by Roy Orbison.
Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth, no one could look as good as you.
Mercy.
Pretty woman.
Sitla Janaki, popularly known as S. Janaki, is an Indian playback singer and occasional music composer from Andhra Pradesh. She is one of the best-known playback singers in South India and has recorded nearly 48,000 songs in films, albums, TV and radio, including solos, duets and chorus songs in more than 37 languages, including those native in India. Mainly in Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu, Hindi, Odia, Bengali, Tulu, Badaga, Urdu, Gujarati, and the list goes on. Starting in 1957 with Tamil film Vidhiyan Vilayattu, her career has spanned over 6 decades. Janaki, who is fondly called the Nightingale of South India, has won 4 national film awards and 33 different state film awards. Here's the famous 1983 Malayalam song Kiliye Kiliye from the film Aaratri was sung. This song by legendary playback singer S. Janaki.
Kiliye Kiliye Mani Mani Megha Sopil Oru Malar Nullan Pogum
श्रोताओं, इस खूबसूरत से गीत के साथ दीजिए इजाजत सरफिरोजी और नीना अर्कल को। कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात और हिंदी न्यूज बुलेटिन। हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।